मुंबई, विश्वनाथ का आलीशान बंगला। दोपहर का वक्त, खिड़कियों से आती धूप हॉल में फैल रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। सोफे पर आमने सामने बैठे थे विश्वनाथ और श्यामली। दोनों की नजरें कभी मिलतीं, कभी बच जातीं। रात का वो पल जब नशे में दोनों करीब आ गए थे, अब होश में वही बात उन्हें बेचैन कर रही थी। श्यामली ने आखिर चुप्पी तोड़ी। आप हमेशा मेरे करीब क्यों आ जाते हैं? हर बार जैसे खुद को रोकना ही नहीं चाहते। क्या आपको सच में लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? या फिर आप बस अपने हक की आड़ में सब कुछ भूल जाना चाहते हैं? उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ था। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सख्ती उभरी। मैं तुम्हारा पति हूं, समझी तुम? ये कोई एहसान नहीं, मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। और जो बीत गया उसे बार बार खींचने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम जितना दूर खागोगी उतना ही खुद को उलझाओगी। श्यामली की आंखों में आग सी चमक उठी। वो झटके से खड़ी हुई और उसके पास आ गई। विश्वनाथ अभी भी बैठा था, लेकिन अब उसकी नजरें ऊपर उठकर सीधा श्यामली पर टिक गईं। श्यामली ने झुककर उसकी तरफ देखा। मिस्टर राठौर, तब आप कहाँ थे जब मुझे हवेली से निकाल दिया गया था? दो दिन, पूरे दो दिन मैंने आपका इंतजार किया। सोचा था आप आएंगे और मुझे वापस ले जाएंगे। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन शब्द और तेज हो गए। लेकिन नहीं, आप नहीं आए। आपकी जगह आया आपका एक आदमी, जिसने ये कहा कि आप मुझे शहर में देखना ही नहीं चाहते और मुझे तुरंत यहां से चले जाना होगा। विश्वनाथ के चेहरे का रंग बदल गया। श्यामली अब रुकी नहीं। उसने मुझे जबरदस्ती ट्रेन में बैठा दिया। मैं पूछती रह गई आप कहां हैं, क्यों नहीं आए, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। बस एक झूठ जो मेरे हिस्से में आ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद विश्वनाथ खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसके करीब आया। मुझे जो बताया गया था वो कुछ और था। मुझे कहा गया कि तुम किसी गगन नाम के लड़के से प्यार करती हो और उसी के साथ चली गई, ठीक वैसे ही जैसे मोहिनी चली गई थी। श्यामली जैसे एक पल को जड़ हो गई। ये झूठ है, उसने तुरंत कहा, पूरी तरह झूठ। मैंने कभी किसी गगन को नहीं चाहा, मैं सिर्फ इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। गलतफहमी एक एक कर सामने आ रहा था। विश्वनाथ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर ये सच है तो हम दोनों एक ही खेल के शिकार हुए हैं। किसी ने हमें जानबूझकर अलग किया और हम बिना सच्चाई जाने एक दूसरे से दूर हो गए। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। शायद, लेकिन जो हुआ वो मिट नहीं सकता। आपका ना आना, वो इंतजार, वो सब आज भी वहीं खड़ा है। विश्वनाथ एक कदम और आगे बढ़ा। तो क्या हम उसे वहीं छोड़ नहीं सकते, फिर से शुरू नहीं कर सकते? तुम वापस आ गई हो मेरे पास, और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में हल्की नरमी थी और आंखों में सच्चाई। श्यामली दो कदम पीछे हट गई। उसने सिर हिलाया। जो हुआ वो गलत था, और शायद हम दोनों की गलती नहीं थी, लेकिन उसे भूलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। उसकी नजरें झुक गईं, फिर बिना कुछ और कहे वो मुड़ी, धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। विश्वनाथ वही खड़ा रह गया। उसकी नजरें बस उसे जाते हुए देखती रहीं। दरवाजा बंद हुआ, टक, और उसी पल उनके बीच की दूरी फिर से लौट आई। हॉल में खड़े विश्वनाथ की नजर अब भी उस दरवाजे पर टिकी थी जहां से श्यामली अभी अभी गई थी। उसकी मुट्ठियां हल्की हल्की भींची हुई थीं। मन में उठते सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर नाम चमका, अदिति। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एक पल के लिए उसने सोचा उठाए ना नहीं, लेकिन फिर कॉल रिसीव कर ली। हाँ, उसकी आवाज भारी थी। उधर से कुछ सेकंड तक सिर्फ सिसकियों की आवाज आई। पापा, अदिति की टूटी हुई आवाज आई, मुझे आपसे कुछ कहना है। विश्वनाथ का दिल हल्का सा धड़का। सीधे बोलो, क्या बात है? अदिति की सांसें बिखर रही थी। जो श्यामली के साथ हुआ था, हवेली से उसे निकालना, वो सब, वो मैंने करवाया था। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, विश्वनाथ का चेहरा सख्त हो गया। क्या? उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी हो गई। अदिति रो पड़ी। मैंने झूठ बोला था, उसे फंसाया था, सबको यकीन दिलाया कि वो गलत है, और उसे घर से निकलवा दिया। विश्वनाथ की पकड़ फोन पर इतनी कस गई कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं। दिमाग में एक एक तस्वीर घूमने लगी। श्यामली का जाना, उसका इंतजार,
और आज का सच। पापा, आई एम सॉरी। अदिति की आवाज टूट रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। लेकिन इस बार विश्वनाथ के अंदर सिर्फ गुस्सा था। उसने दांत भींच लिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। एक झूठ के लिए तुमने मेरी पूरी जिंदगी उलट दी। जिस औरत को मैं गलत समझता रहा वो आज तक सजा भुगतती रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, जल रही थी। अदिति चुप, बस रो रही थी। विश्वनाथ की आंखों में खून उतर आया। उसे ये समझ आ चुका था, उसके अपने ही बेटे की पत्नी वही इंसान थी जिसने उसे और शामली को अलग किया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। हवेली, शाम ढल चुकी थी और पूरे आंगन में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। अदिति कमरे के कोने में खड़ी थी, हाथ अब भी कांप रहे थे, आंखें सूजी हुई, जैसे रो रो कर थक चुकी हूँ। फोन अभी अभी उसके हाथ से नीचे गिरा था और उसके कानों में अब भी विश्वनाथ की गूंजती हुई आवाज गूंज रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधों को थाम लिया। अदिति हल्के से सहर उठी। आर्यन, आर्यन उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। डरो मत, उसकी आवाज धीमी लेकिन ठहरी हुई थी। मैं हूं ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अदिति का शरीर जैसे उसी पल ढह गया। उसने अपना चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया और फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया आर्यन। मैंने पापा और शामली के बीच जो किया वो बहुत गलत था। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आर्यन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सख्ती थी। गलती हुई है, उसने धीरे से कहा, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। अदिति ने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर साफ था। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो। आर्यन ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। कोई तुम्हें कहीं नहीं निकालेगा, समझी तुम? तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। जिसने भी तुम्हें छूने की कोशिश की उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था जो अदिति को थोड़ा संभाल गया, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पर सच तो अब सामने आ गया है सब कुछ। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा झुका। सच सामने आया है तो अब चीजें भी बदल जाएंगी। अदिति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? आर्यन की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। मतलब ये कि अब हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। पापा गुस्से में है और जब वो यहाँ आएंगे तो सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, फैसला भी सुनाएंगे। कमरे में एक ठंडी खामोशी छा गई। अदिति की उंगलियां कसकर आर्यन की शर्ट पकड़ चुकी थी। तो अब क्या करेंगे हम? आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर धीमे से कहा, अब सच को कैसे संभालना है ये हम तय करेंगे। क्योंकि अगर ये बात बाहर फैली तो सिर्फ तुम नहीं पूरा परिवार टूट जाएगा। अदिति ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। बाहर हवेली के गलियारे में कदमों की आहट गूंजने लगी थी जैसे कोई तूफान।